विचार चल रहा है कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली के प्रथम मंत्र के ऊपर। दृश्यते तग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। एकाग्र बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि से स्वस्वरूप परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इसमें प्रतिबंधक बहिर्मुखता, इसको दूर करने के लिए जमराज जी सभी साधकों के लिए साधन बता रहे हैं। एक तो धीर होना होगा, बहुत धैर्य की आवश्यकता है व्यवहार काल में। अपने दृष्टा स्वरूप को ना भूले, स्व से अतिरिक्त जितने भी है दृश्यते न समस्त जगत, ये अनात्मा है, उससे मैं भिन्न हूं, इसको ना भूले। इसको यदि ना भूले तो संसार में कोई भी पदार्थ साधक को विक्षेप नहीं कर सकता है। और साधन अवस्था में आवृत चक्षु हो, इंद्रियों को बाहर जाने नहीं देना है। लेकिन इंद्रियां बाहर न जाने पर भी बाहर के फोटो को जो खींच करके रखा है, मन में रखा है, उसको देखता रहेगा मन, तब तो भजन नहीं हो सकता है। मनोराज्य करेगा तो भजन के समय यदि मन बाहर जाता हो तो समझना चाहिए कि संसार के प्रति कुछ कामनाएं अभिलाषा अवशिष्ट है। इसलिए क्या करना चाहिए, अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व की इच्छा को तीव्र करें। अमृतत्व की इच्छा को तीव्र यदि किया जावे, ना मन बाहर जाएगा मनोराज्य करेगा, ना निद्रा में जाएगा। यदि दोनों रास्ता को रोक दिया, मनोराज्य भी ना होता हो निद्रा में भी ना जाता हो, तो मन अपना जो स्वरूप ब्रह्म है उसको ही विषय करेगा, अन्यत्र नहीं जाएगा। तो ऐसा तीन साधन बताया, धीर है, आवृत चक्षु और अमृतत्व की तीव्र इच्छा। ऐसा होने पर ज्ञान में ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता आ जाएगी। बुद्धि में एकाग्रता आ जाएगी व्यवहार करते समय भी, तो ज्ञान की योग्यता आने पर प्रत्येक आत्मानम एकच्छत, प्रत्येक आत्मा अपने स्वरूप को दर्शन कर लेता है। तो जिसका दर्शन करना है, आत्मा का दर्शन करना है, विशिष्ट आत्मा नहीं सामान्य आत्मा है, तो आत्मा की पहचान करानी है, ज्ञान कराना है। इसलिए आत्मा के विषय में थोड़ा समझ लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भगवान भाष्यकार भाष्य में लिखते हैं, जिसके पास भाष्य है तो देख सकते हैं पुस्तक में। तो यच्चाप्नोति यत आदत्ते यच्चाति विषयान यह यच्चास्य संततो भावस्तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते। आपले व्याप्तो सर्वाणि वस्तुनि आपनोति इति आत्मा। ये जो आत्मा है सबको व्याप्त करके रखता है। सृष्टि काल में अपने से ही प्रकट कर लेता है आत्मा। स्वप्न में व्यक्ति जाता है, स्वप्न पदार्थ को उत्पन्न करने के लिए कोई बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं होती है। जागृत में यदि लड्डू बनाना हो तो सामग्री की आवश्यकता होती है, लेकिन सपनों में लड्डू बनाना हो तो किसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो सृष्टि काल में अपने से ही आत्मा प्रकट कर लेता है, और स्थिति काल में सबको व्याप्त कर लेता है। और समय जब आता है प्रलय का समय, तो महाप्रलय के समय अपने में लीन कर लेता है। इसलिए दूसरा लिखते हैं यद आदत्ते, सबको जो अपने में लीन कर लेता है वो हो गया आत्मा। आंग पूर्वक ददाने सर्वाणी वस्तुनि आदत्ते संघरति इति आत्मा। तो सृष्टि काल में अपने से प्रकट कर लेता है, स्थिति काल में सबको व्याप्त कर लेता है, और प्रलय काल में अपने में लीन कर लेता है। जैसे कि मान लो आप कभी कहीं बाहर जा रहे हैं, रास्ते में देखा किसी कुम्हार को, तो घटादी बनाने के लिए मिट्टी का पिंड रखा है, आप उस रास्ते से चले गए और शाम के समय लौटे, देखा कि वो मिट्टी का जो पिंड है ही नहीं, वो कहाँ गया? कुमार ने कहा कि कहीं गया नहीं, सामने जो तुम्हें दिख रहा है ना वो ही है। तो बड़ी विलक्षण बात होगी कि नहीं, मिट्टी से बन गया घड़ा, ग्लास बन गया, परुआ बन गए, बहुत सारे तमाम प्रकार के पात्र बन गए। तो जितने भी बन गए मिट्टी से, सभी पात्र में एक मिट्टी ही व्याप्त है, सबको व्याप्त करके मिट्टी ही रखती है। एक सुवर्ण से अनेक प्रकार के अलंकार बन जाते हैं, सभी अलंकारों में एक सुवर्ण व्याप्त है। और सुवर्ण को यदि प्राप्त करना हो तो अलंकार को गलाना पड़ेगा, क्यों जी? तो गलाने से ही क्या सुवर्ण मिलेगा? गलाने की कोई जरूरत नहीं है, अपितु अलंकार के प्रति जो आपका मोह है, अलंकार का नाम और अलंकार का रूप, दोनों के प्रति जो अपना मोह है उसको छोड़ना होगा। नाम और रूप में मिथ्यात्व का निश्चय करना होगा। तो किस नेत्र से आप निश्चय करेंगे? माइक नेत्र से आप निश्चय नहीं कर सकते। जैसे स्वप्न में स्वप्न का पदार्थ दिखता है, स्वप्न का पदार्थ स्वप्न के नेत्र से दिखता है, स्वप्न पदार्थों को देखने के लिए जागृत नेत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार स्वप्न पदार्थ को मारने के लिए, स्वप्न का व्याघ्र को मारने के लिए जागृत अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी प्रकार जागृत में ले लीजिए, ये जो माइक नाम है और माइक रूप दिख रहा है, तो ये माइक नेत्र से दिख रहा है और माइक नेत्र नाम और रूप को भेदन नहीं कर सकता है। तो कौन सा नेत्र भेदन करेगा भाई? ज्ञान नेत्र भेदन करेगा। तो व्यवहार काल में यदि हमको ज्ञान नेत्र प्राप्त हो जावे ईश्वर की कृपा से, गुरु कृपा से, शास्त्र की कृपा से और आत्मा की कृपा से, तो साधक जीवन में एक समस्या आती है कि मान लो ईश्वर की कृपा से हमको मनुष्य जन्म मिला और स्वस्थ अनुकूल शरीर भी मिला, ये ईश्वर की कृपा से मिला है, और गुरु की कृपा से गुरु शरणागति भी हमको मिली, गुरु के पास भी गए हम, शास्त्र का अध्ययन भी हुआ, ये गुरु की कृपा है। और शास्त्र की कृपा क्या है, शास्त्र में प्रतिपाद्य क्या है, उसको समझ लेना जी ब्रह्म का एकत्व, ये समस्त वेदांत का प्रतिपाद्य विषय है, इसको समझ लेना ये शास्त्र की कृपा होगी। तो विचार करना चाहिए इतने मात्र से क्या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती। जब तक आत्म कृपा ना हो, शास्त्र प्रतिपाद्य जो विषय है वो विषय मेरा है, ये समस्या आती, प्रतिबंधक होता है। देखो जब तक अपने जीवन में यह निश्चय ना हो जावे शास्त्र प्रतिपाद्य जो विषय है मेरा विषय है, तब तक शास्त्र में महत्व बुद्धि नहीं होती है। जैसे मान लो आप अखबार पढ़ रहे हैं, पत्रिका पढ़ रहे हैं, अखबार में तमाम प्रकार की खबरें आती है, कोई व्यक्ति मर गया हो, उसमें ज्यादा कोई महत्व नहीं देते हैं, वो व्यक्ति ये दूसरा कोई हो तो, अपना संबंधी ना हो तो ज्यादा महत्व नहीं होता है। लेकिन पुत्र यदि कोई भी व्यक्ति हो, अपने संबंधी हो तो बहुत महत्व देते हैं। तो क्यों देते हैं आप? वो व्यक्ति अपना है, इसलिए अपने महत्व बुद्धि आती है। इसी प्रकार से शास्त्र को आपने समझ लिया, ये शास्त्र की कृपा है देखो, लेकिन शास्त्र प्रतिपाद्य विषय मेरा है, आम अस्मि ब्रह्म ये मेरा ही विचार है। आपने समझ लिया कि सारा जगत कैसा है, ब्रह्म है, सर्वम खलुइदं ब्रह्म, उससे क्या हुआ? वो ब्रह्म मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार जब तक महत्व बुद्धि ना हो तब तक साक्षात्कार नहीं होता है, ये अंतिम घाटी है। देखो जब तक आत्म कृपा ना हो तब तक अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है, भले ही परोक्ष ज्ञान हो। तो इस प्रकार ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा, तो ऐसी चतुर्विध कृपा का पात्र होने पर जब ज्ञान नेत्र खुल जाता है, तो जब ज्ञान नेत्र जब खुल जाता है नाम और रूप को भेदन करके तो अधिष्ठान पर्यंत पहुंचता है। जैसे पर्दे में चित्र तमाम के दिखते हैं, चित्र को भेदन करके अपना नेत्र पर्दा तक पहुंचना चाहिए। इसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं भगवान भाष्यकार, सृष्टि काल में परमात्मा ने प्रकट कर लिया और महाप्रलय के समय अपने में लीन कर लिया और स्थिति काल में सबको व्याप्त करके रखा है। ऐसा जो तत्व है उस तत्व तक अपना ज्ञान नेत्र पहुंचना चाहिए। अज्ञान नेत्र तब पहुंचेगा, आंख खुलते ही रूप ही दिखाई देता है, अब कैसे पहुंचेगा? श्रोत्रेन्द्रिय खुलते ही नाम ही सुने देगा आपको, और ये नाम और रूप से अधिष्ठान व्याप्त है, ये आवृत है ना? इसलिए व्यवहार करते समय भी नाम और रूप जो दिख रहा है वो कल्पित है। तो कल्पित पदार्थ को भेदन करके, मतलब मिथ्यात्व का निश्चय करके, मिथ्यात्व का निश्चय करके जो अधिष्ठान है वो स्वरूप मेरा है, ये अभ्यास करना चाहिए व्यवहार के समय भी। ये तब होता है जब अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास यदि नहीं करेंगे तो जीवन ऐसा ही चला जाएगा। इसलिए एक बात ध्यान रखिए, जो वेदांत श्रवण करते हैं ना, तो वेदांत यदि आपको समझ में आता हो तो पहले तो समझ में नहीं आता कुछ, क्या मिथ्या है ना, क्या जो है अवच्छिन्न है, क्या प्रतिबिंब है, ये समझ में नहीं आता है। जब आपको शास्त्र समझ में आता हो थोड़ा थोड़ा, तो मन उससे रस लेता है, जिसको रसास्वादन बोलते हैं ना। तो योगी जैसे मन को एकाग्र करता है, जब मन एकाग्र होने पर एक रस आता है उससे, तो इसीलिए साधक अवस्था में व्यक्ति उसी में ही रह जाता है। इसी प्रकार जब वेदांत का श्रवण करते हैं, चाहे वेदांत का श्रवण करो, चाहे कथा का श्रवण करो कोई भी, चाहे भजन का श्रवण करो, उसमें जब रस आएगा ना, वो रस कहां से आ रहा है? वो शब्द से आ रहा है। देखो पकड़वाना भी, हाँ आपको समझ में आता हो, हाँ स्वामी जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हमको सब समझ में आ रहा है, तो ये भी जो क्या है, मन की भ्रांति है। देखो तो इसी में भी रस नहीं लेना चाहिए साधक को, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, है ना? तो आगे तब बढ़ेंगे जब अभ्यास करेंगे। तो शास्त्र जो प्रतिपाद्य विषय है वो तो ठीक है, उसके प्रति आपका विश्वास है, श्रद्धा है, होने पर भी शब्द का जो प्रतिपाद्य अर्थ है अधिष्ठान ब्रह्म, उस अधिष्ठान ब्रह्म में नाम भी कल्पित है, रूप भी कल्पित है। रस्सी में सर्प का नाम भी कल्पित है, सर्प का रूप भी कल्पित है। जैसे आपको दृष्टांत बताया, सुवर्ण में जो अलंकार है तमाम प्रकार के, वो नाम भी कल्पित है और रूप भी कल्पित है। तो कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है, अधिष्ठान अवशेषो ही कल्पित वस्तु न, कल्पित वस्तु की सत्ता अधिष्ठ। सारा का सारा रस तो आत्मा से ही आता है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं होता है। वो यदि ज्ञान आपको हो गया तो मोह नहीं होगा आपका विषय के प्रति, महत्व बुद्धि नहीं होगी। जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ले के प्रति आपकी इच्छा है, कि कल पुरुष भी आपको बताया, जिस समय खाते हैं तो उस समय रस मिल रहा है कि नहीं, तो उस समय ये बुद्धि होनी चाहिए। देखो बस खाने की चीज है ये, समझ में ना, अच्छा तो लग रहा है आपको है ना, उसमें यदि आपने भावना नहीं किया, कौन सी भावना, बस खाने की चीज है ये, बस चाहे सूखी रोटी हो चाहे घी लगा हुआ रोटी हो, अन्न है। इस प्रकार यदि भावना होगी तो शोभन बुद्धि नहीं होगी, क्या बढ़िया चीज है, ये बुद्धि नहीं होगी। देखो हो गया ना, ये तो जो अच्छा लगता है, सुख मिलता है, सुख ठीक है आत्मा से आता है, लेकिन उस समय आपको भान नहीं हो रहा है ना कि सुख आत्मा का है, ये तो रसगुल्ले से सुख आ रहा है। और उस समय यदि आपको भान हो गया भाई आत्मा का सुख है, तो आपको ज्ञान हो गया, फिर हो गया ना भाई। इसलिए अभ्यास के समय ये करना चाहिए, नाम भी और रूप भी, ये दोनों को दोनों किस में कल्पित है, एक अधिष्ठान आत्मा में कल्पित है। तो नाम को जो सत्ता दे रहा है, रूप को जो सत्ता दे रहा है स्थिति काल में, वो तत्व आत्मा है, वो मेरा स्वरूप है, ये अभ्यास करना है। और जिसने इस संसार को उत्पन्न किया और वही जीवात्मा होकर के रूप को भी देखता है, रस को भी चखता है, सारा व्यवहार करता है, सपना शरीर को आप ही ने बनाया, तो जिसने बनाया वही देखता है सपना को। इसलिए यहां पर चौथा कहते हैं, यच्च अति विषयान यह तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविशत, जिसने शरीर को बनाया उसी शरीर में ही प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट मतलब ऐसा नहीं समझना है जैसे घर के अंदर व्यक्ति प्रविष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। जैसे घर के अंदर आकाश प्रविष्ट हो गया, इसलिए प्रविष्टवत उपलब्धते, भगवान भाष्यकार लिखते हैं। आत्मा का प्रवेश कैसा है, घाट में आकाश की तरह प्रवेश है ना। शरीर में अम बुद्धि कल्लना, यही शरीर में आत्मा का प्रवेश है ना। और शरीर वही होता है जिस शरीर में अपनी अहमता होती है। जैसे सपने में तमाम प्रकार के शरीर होते हैं, तो सभी शरीरों को आप ही ने उत्पन्न किया है कि नहीं। स्वप्नावस्था में जितने भी शरीर दिखते हैं तो किसने उत्पन्न किया, आप ही ने किया। लेकिन सभी शरीरों में अपनी अहमता होती है क्या, नहीं होती है। तो जिस शरीर में आपकी अहमता होगी वही आपका शरीर है, हो गया ना भाई। और जिस शरीर में अपनी अहमता होगी उसी में आपका भोग होगा, दूसरे में भोग नहीं हो सकता है। जैसा सपना है ऐसा जागृत है, जागृत में भी तमाम प्रकार के शरीर दिखते हैं, लेकिन जिस शरीर में अपनी अहमता हो रही है कि मैं यही हूं, इसी में आपका होगा, दूसरे में नहीं होगा। तो इस शरीर में अज्ञान के कारण जब अपनी अहमता हो जाती है, तो इस शरीर को लेकर के चक्षुरादि माध्यम से रूप का ज्ञान करता है, रस का ज्ञान करता है, तमाम प्रकार का व्यवहार करता है। इसलिए बता दिया कि अति विषयान, सभी विषयों को जो ग्रहण करता है, अधभक्षण, ये सभी विषयों को जानना ही भक्षण करना है ना। भाई रसगुल्ले का सुख लेना मतलब क्या, रसगुल्ले को रस को जान लेना कि ये बहुत अच्छा है ना। रूप का भोग करना मतलब क्या, रूप का ज्ञान होना। इसलिए भोग जो होता है ज्ञान से कोई अतिरिक्त नहीं है। और ज्ञान ना होता और भोग होता हो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। रूप का ज्ञान ना हो, अरे रूप बहुत अच्छा हो, ये बुद्धि नहीं होगी। देखो रसगुल्ले का ज्ञान आपको ना होता हो, रसगुल्ला बहुत अच्छा हो, ये नहीं होता है। इसलिए सूक्ष्म दृष्टि से विचार करेंगे, ज्ञान से अतिरिक्त कोई भोग नहीं होता है, ज्ञान का आकार ही भोग है बस, है ना। इसलिए जो बौद्ध सिद्धांत वाले, ज्ञान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और वास्तविकता ये वेदांत में भी ऐसा है। देखो ये क्षणिक विज्ञानवादी वेदांत के बहुत समीप है, तो विचार करके देख लीजिए आप, सपन में जो दिखाई देते हैं जितने ही पदार्थ है, तो ज्ञान से अतिरिक्त कुछ है क्या? आप ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, तो यही आत्मा जो चेतन ही अनेक रूप से दिखता है, हो गया कि नहीं? फिर आत्मा चेतन से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है पदार्थ। इसी प्रकार जागृत में भी ऐसा है, लेकिन ज्ञान इतना जल्दी नहीं हो पाता है, बहुत कठिन है। तो शरीर में अहमता के कारण तमाम प्रकार के रूपादि विषयों को यही भोग करता रहता है। तो ये बता दिया। और ये जितने भी विषय है, ये विषय कैसे आने वाले जाने वाले हैं? आने जाने वाले हैं, विषय होते हैं। नाम भी आता है जाता है, रूप भी आता है जाता है, लेकिन ये जो अधिष्ठान जो तत्व है, घटादि में जो मिट्टी तत्व है, अलंकारों में जो सुवर्ण तत्व है, उसी प्रकार ये संसार में जितने भी नाम और रूप है, कार्य संसार, ये सब आने वाले जाने वाले हैं। सृष्टि से पहले जगत नहीं था, लेकिन सदैव सम्य इदम अग्रे आसीत, सद ब्रह्म था। अब प्रलय काल में भी संसार नहीं रहता है, लेकिन आत्मा है, अधिष्ठान रहता है। तो अधिष्ठान कहीं आने वाला जाने वाला नहीं, और कल्पित पदार्थ जो संसार जो है, आने वाला जाने वाला है। इसलिए जो आने जाने वाले हैं, इसको तुम आने वाले जाने वाले समझो और तितिक्षा करो। तुम आने जाने वाले न हो, हे अर्जुन, आगमा पाइनो नित्यान तान तितिक्षस्व भारत। इस प्रकार जब भावना करेंगे तब तितिक्षा आएगी व्यवहार काल में, है ना? तो तितिक्षा के बिना कोई धीर नहीं बन सकता है। इसलिए जो आत्मा है, यच्चास्य संततो भावः, आत्मा का जो भाव है, आत्मा की सत्ता सर्वदा रहती है। तीनों काल में देखो, सृष्टि से पहले भी है, और स्थिति काल में भी है, और प्रलय काल में भी है। और जिसकी सत्ता पहले नहीं और आगे भी नहीं, और वर्तमान में दिखेगा तो बस प्रातीतिक होगा वो, है ना? प्रातिभाषिक होगा उसको, उसी का नाम क्या है? प्रातिभाषिक है, है ना? तो आदावंते यन्नास्ति वर्तमाने आपि तत्तथा, जो पहले ना हो और बाद में ना हो और वर्तमान में जो दिखता है वो तो प्रातिभाषिक है। इसलिए प्रातिभाषिक जो होता है भाई, ये मध्यम अधिकारी के लिए है। वेदांत में भी अनेक प्रकार की चर्चाएं होती है, ये अधिकारी भेद से होती, अधिकारी भेद से। सबके लिए समान उपदेश नहीं किया जाता है भाई। आप विचार कर देख लो भाई, स्वप्न पदार्थ भले ही मिथ्या हो, आप कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म एवं आप बोलते हैं, है ना भाई? स्वप्न पदार्थ मिथ्या है, चलो ठीक है, मान लिया, है ना? लेकिन जागृत में जो खा रहे पी रहे हैं, ये भी मिथ्या है, तो हमारी बुद्धि जल्दी नहीं जसती है, नहीं जसती है ना? इसलिए शास्त्र कहता है, ठीक है, तुमको जब तक ज्ञान नहीं हो रहा है, इसको तुम क्या मान लो? व्यवहारिक मान लो, व्यवहारिक रस्सी को व्यवहारिक मान लो, सर्पों को प्रातिभाषिक मान लो। तो ये कौन सा अधिकारी के लिए भाई? मध्यम क्या? मंद अधिकारी, है ना? तीन सत्ता होगी ना, है? सपना की सत्ता, रस्सी की, ये सर्प की सत्ता ही क्या हो गई? प्रातिभाषिक हो गई, प्रातिभाषिक हो गई, मिथ्या हो गया ना भाई। लेकिन जागृत का पदार्थ तो ये है, ये व्यवहारिक है, व्यवहारिक, बुद्धि नहीं मान रही कि नहीं, ये भी ये कैसे मिथ्या होगा, हाँ रसगुल्ला यदि खाना हो तो खरीदना पड़ता है, नहीं तो बनाना पड़ता है, है ना। तो इसको कैसे मिथ्या मानेंगे? चलो ठीक है, व्यवहार मान लो, इसको व्यवहारिक मान लो, ये मंद अधिकारी हो गया। दो सत्ता हो गए ना, हाँ, सपना की सत्ता हो गई प्रतिभासी, जागरण में खा रहे पी रहे हैं, ये हो गई व्यवहारिक हो गई। और दोनों का जो अधिष्ठान है परमात्मा वो कैसा है? तो तीन सत्ता हो गई कि नहीं? तीन सत्ता हो गई है ना। लेकिन विचार किया, देखो सपनों में जैसा दिखता है ना, जागृत में भी ऐसा ही दिख रहा है, और क्या है? तो सपनों का लड्डू खाते हैं वहां पर भी सुख मिलता है कि नहीं? तो जागृत का जो लड्डू खाते हैं यहां पर भी सुख मिलता है। दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, हो गए कि नहीं? इस प्रकार जब विचार करेंगे, देखो विचार करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी प्रातिभाषिक हो जाएगा। ये सपना पदार्थ ही प्रातिभाषिक, जागृत ही प्रातिभाषिक हो जाएगा। ये सबके लिए नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है ये, है ना। तो ये हो गया मंद अधिकारी। अभी भी ज्ञान हुआ कहां? मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान हुआ नहीं अभी तक, है ना। दो सत्ता हो गए देखो, है ना, सपना और जागृत दोनों कैसे हो गए? दोनों मिथ्या हो गए, देखो दोनों कल्पित हो गए। ये भी कल्पित है, ये भी कल्पित, ये मंद, ये मध्यम अधिकारी हो गया। ब्रह्म है पारमार्थिक, और ब्रह्म से अतिरिक्त जितने भी है ना, ये सब प्रातिभाषिक हो गए। ये हो गया मध्यम, मध्यम है ना। इसको जो है दृष्टि सृष्टिवाद बोलते हैं, दृष्टि सृष्टिवाद। ये मध्यम अधिकारी के लिए दृष्टि सृष्टिवाद है, और मंद अधिकारी के लिए सृष्टि दृष्टि बात है, हो गया ना भाई। लेकिन जो उत्तम अधिकारी होता है उसी के लिए क्या है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, बस ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बस जो भी दिखाई दे रहा है ब्रह्म ही अनेक रूप से दिखाई देता है, हो गया कि नहीं? इसलिए ज्ञानी जो है नित्य मुक्त है, है ना। इसलिए ज्ञानी को जो ज्ञान होता है आत्यंतिक निवृत्ति का ज्ञान होता है, आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति का ज्ञान एक ज्ञानी को होता है, है ना। सर्प ना रस्सी, ना रस्सी में जो सर्प दिखाई अभी दे रहा है, ना पहले था, ना अभी है, ना आगे है, रहेगा, हो गया कि नहीं? इस प्रकार का ज्ञान जो हो गया कर्म करते हुए भी वो क्या है? मुक्त है, हो गया कि नहीं? ज्ञानी नित्य मुक्त का ज्ञान, नित्य मुक्ति का ज्ञान होता है। तो यहां पर भी कहते हैं ये जो आत्मा अधिष्ठान तत्व है इसकी संततो भाव, इसकी सत्ता कभी भी ये नहीं जाती है। अरे ये आत्मा क्या किया है व्यवहार के समय? तीन तीन कमरे को बनाकर रखा है, तीन कमरे है? कोई व्यक्ति मान लो तीन कमरे बनाया हो, और एक कमरे में क्या करता है कि व्यवहार करता है, अपना व्यापार चलाता है भाई, लोगों से मिलता है, और दूसरा एक कमरा बना रखा है अंतरंग कमरा, अंतरंग वहां पर सबको नहीं आने देता है, अपना हिसाब किताब अकाउंट कर काम करता है। तो दिन में जितना काम हुआ है, कितना माल आया, कितना गया, कितना मुनाफा हुआ, इसका सब हिसाब किताब जो है वो अंतरंग कमरे में करता है ना। और तीसरा एक कमरा बना रखा है, वहां पर जाकर खा पी कर सो जाता है, सबसे निवृत्त होकर के सो जाता है, है ना। तो इसी प्रकार ये आत्मा है, ये तो जागृत बनाकर रखा है, जागृत में खा रहा है, पी रहा है, व्यवहार करता है, सब कुछ करता है। और जागृत का जो भोग समाप्त हो जाता है, जागृत में जो फोटो खींच कर रखा है ना इंद्रियों से, इंद्रियों का फोटो मन में रखा है कि नहीं, संस्कार। तो इंद्रियों के द्वारा होने वाला जो मन में जो संस्कार है, उस संस्कार से संस्कृत मन के द्वारा इस स्वप्न में वो देखता रहता है, मिलाता है। देखो हम जागृत में क्या क्या किए हैं पाप पुण्य के आधार पर, आप जैसा चाहेंगे ऐसा स्वप्न नहीं देख सकते, है कि नहीं भाई? स्वप्न कोई बुरा देखूं ये कोई भी नहीं चाहता है ना, क्यों नहीं चाहता है? चाहना पर भी क्यों नहीं होता है ना? हम अच्छा सपना देखूं, बुरा सपना नहीं देखूं, हर कोई चाहता है। चाहने पर ही बुरा सपना ही क्यों देखता है भाई? इसका मतलब पाप पुण्य है। जो कर्म फल देने के लिए तैयार होगा तत् अनुसार ही आपको सपना होगा, उससे विपरीत सपना नहीं होगा। तो ऐसा जानने वाला कौन होगा भाई? इस व्यक्ति को अभी यही कर्म का फल देना है, हाँ, ऐसा जानने वाला कौन होगा? परमात्मा है कि नहीं? ये देखो परमात्मा प्रत्यक्ष है, देखो परोक्ष कहाँ है बताओ? आप विचार कर देख लो, इस प्रकार विचार करेंगे तो परमात्मा कैसा है? प्रत्यक्ष है। तो कर्मों को जानने वाला परमात्मा जरूर है। परमात्मा यदि नहीं होता, ये कर्म की जो नियत व्यवस्था है, नियत व्यवस्था कैसे हो रही है फिर, है ना? तो पाप पुण्य के सहकृत और जागृत कालीन भोगजन्य संस्कार से संस्कृत मन के द्वारा इस स्वप्नावस्था रूपी द्वितीय गृह में, घर में वो देखता रहता और वहां पर भी थक जाता है जी। चाहे जागृत काल में मन का व्यापार हो, चाहे स्वप्न काल में मन का व्यापार हो, अब व्यापार होने मात्र ही श्रम होता है, श्रम थकावट है। और जागृत में क्या हो रहा है कि इंद्रियों के साथ साथ मन का व्यापार हो रहा है ना? और स्वप्न में क्या हो रहा है? केवल मन का व्यापार है, इंद्रियों का व्यापार नहीं होता है ना? ये मन ही इंद्रियां बन जाएगा, ये मन ही लड्डू बन जाएगा, मन ही पात्र बन जाएगा, ये सब बन जाएगा। कभी कभी तो सपना में ऐसा हो जाता है, मान लीजिए आपने हाथ से उठाया बड़ा पाव और खाते खाते में रसगुल्ला भी हो जाता है कि नहीं भाई? मन में ऐसी सामर्थ्य क्या क्या जी, मन का स्वभाव ही ऐसा है ना? तो पाप पुण्य के आधार पर मन का ऐसा स्वभाव बन जाता है। तो मन में भी श्रम हो रहा है, देखो सपना अवस्था में भी मन में श्रम होता है। तो इस श्रम को दूर करने के लिए सुसुप्ति में चला जाता है, देखो सब छोड़ देता है। ना जागृत का व्यवहार हो रहा है, ना स्वप्न का व्यवहार है, समस्त व्यवहार से निवृत्त होकर के सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है। ये असली घर है, देखो सुसुप्ति जो है ना असली घर है, देखो यहाँ हर कोई जाना चाहता है ना? लेकिन परमात्मा के साथ एकीभूत तो होता है, लेकिन जानता नहीं ना। कोई वस्तु अपने पास होने से क्या मतलब? यदि उसकी पहचान ना हो तो, मान लीजिए किसी के घर में पारस मणि का पत्थर हो और यही पारस मणि है ना, इससे यही होता है लोहा भी सोना बन जाता है, ऐसा यदि ज्ञान यदि ना हो तो आप क्या करेंगे? जीवन भर चटनी पीसेंगे और क्या करेंगे? है कि नहीं भाई? धनिया की चटनी, पुदीना की चटनी पीसता रहेगा और क्या करेगा? हाँ, इस पर अगर हम लोग चटनी ही पीस रहे हैं और क्या है, विचार करके देखिए, है ना? अपना स्वरूप ही परमात्मा है और परमात्मा के साथ रोज एकीभूत होते हैं। एकीभूत होने पर भी ज्ञान नहीं हो पाता है ना, ज्ञान कौन कराएगा? वहां पर कोई कराने वाला ही नहीं है, ना कराने वाला है, ना करने का साधन है सुसुप्ति में, हो गया ना? तो जो भी करना है जागृत में ही करना है। तो ये जो इस प्रकार जो विचार करेंगे, तो ये जो तीन प्रकार का जो कमरा है ना, ये सुसुप्ति अवस्था, सपना अवस्था, जागृत अवस्था, देखो ये विचार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साधन हो जाएगा। तो साधन हो जाएगा, है ना, इसलिए साधकों के लिए परमात्मा ने अनुग्रह किया। देखो तीन प्रकार की अवस्था बना करके, इसलिए मांडव के में आप लोग सुने होंगे ये तीनों को क्या कहा, पात कहा, पात कहा कि नहीं भाई, अयम आत्मा चतुष्पात, ये जो आत्मा जो है ना चार पाद वाला, चार पाद। बोले कि आत्मा का तो कोई पाद नहीं, चार पाद कहां से आ गया, है ना। तो ये जो जागृत अवस्था विश्व, सपना अवस्था ये माने जो तेजस, और सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञ, ये तीन जो है ना प्राज्ञ बेष्टि में, तो इसको तीन को पाद कह दिया। साधन होने से पाद है, देखो विचार करेंगे तो ये साधन हो जाएगा, नहीं तो जीवन भर ऐसा ही जाएगा, है कि नहीं। सपना अवस्था यदि नहीं होती, जागृत में आप विचार कैसे करेंगे, हो गया ना। तो जागृत में जो भी दिखाई दे रहा है ये मिथ्या है, निश्चय कैसे करेंगे आप, दृष्टांत के बिना निश्चय नहीं होता है, है ना। ये सारा का सारा जगत, जगत मिथ्या, दृश्यत्वाद, परिच्छिन्नत्वाद, करते कि नहीं विचार, क्या स्वप्नवत। सपनों यदि नहीं होता तो साधक ये निश्चय नहीं कर सकता है, देखो कि सारा का सारा जगत कैसा है, दिखाई देने पर भी ये वास्तविक नहीं, मिथ्या है, हो गया ना। और सुसुप्ति यदि नहीं होती, सुसुप्ति का निर्माण भी परमात्मा ने न किया होता, तो ये निश्चय नहीं हो पाता कि बिना विषय से भी सुख होता है, है? सुसुप्ति में कौन सा विषय है, ये कोई विषय नहीं है, तो बिना विषय से भी सुख होता है कि नहीं, ये तार्किक लोग नहीं मानते। देखो भाई बिना विषय के कैसे सुख होगा, विचार कर देखो होता है। सुसुप्ति में जाते हैं तो कोई भी विषय नहीं, देखो कोई भी विषय नहीं है, फिर भी सुख वो है आत्मा का सुख। देखो आत्मा सम प्रकाश है, इसका निश्चय जो स्वप्न ना होता तो निश्चय नहीं हो। देखो आत्मा अभी आएगा, आत्मा सम प्रकाश है, इसका निश्चय जागृत में जल्दी नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है भाई, सूर्य का प्रकाश है, देखो हेलोजन का प्रकाश है, इस प्रकाश से दिख रही है पुस्तक, आत्म प्रकाश से पुस्तक दिख रही है, ऐसा निश्चय नहीं होता है। लेकिन स्वप्न में जाएंगे वहां पर कौन सा प्रकाश है भाई, ना सूर्य का प्रकाश है, ना बल्ब का प्रकाश है, ना कोई प्रकाश नहीं है, फिर भी मालूम पड़ता है आत्मा का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश से सारा सपना दिखाई देता है। और जागृत में भी ऐसा विचार करना चाहिए सपनों के आधार पर, भैया आपने संकल्प किया, देखो थोड़ा सा संकल्प हुआ आंख बंद करके, है ना, थोड़ा सा संकल्प भैया हुआ फिर भी स्फुरित कैसे हो जाता है, किस प्रकाश से हुआ, आंख बंद करने पर ना सूर्य का प्रकाश है, ना बल्ब का प्रकाश है, कोई भी बाह्य प्रकाश नहीं है, फिर भी ज्ञान हो जाता है संकल्प का, है ना। अनुकूल वस्तु होने पर शांत मन को भी आप जानते हैं, प्रतिकूल वस्तु होने पर अशांत मन को भी आप जानते हैं, देखो तो आत्म प्रकाश से हो गया। तो ये जो तीनों अवस्था है, तीनों अवस्था है, जैसे तीन कमरे से व्यक्ति यदि अलग नहीं होता, भाई बारी बारी से कैसे जाता फिर कमरों में, इसी प्रकार इस तीनों अवस्था से, तीनों अवस्था में होने वाला समस्त व्यवहार से यदि आत्मा अलग नहीं होता, है ना, फिर बारी बारी से कैसे जाएगा। ये तीनों अवस्था, तीनों अवस्था में होने वाले व्यवहार आने जाने वाले है, आत्मा आने जाने वाला नहीं है। तो ऐसा जो आत्मा तत्व है उसका साक्षात्कार वही कर सकता है जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, व्यवहार करते समय भी अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब ये नहीं समझना है कि आंख बंद कर लिया तो अंतर्मुखी है, है ना, ये वेदांत की साधना नहीं है, देखो ये योगियों की साधना है, ये आंख बड़ा बंद करके ध्यान लगाना ये योगियों की साधना है, वेदांत की साधना ये नहीं है। व्यवहार करते समय भी आत्म तत्व का ज्ञान करना है, है ना। तो वही कर सकता है जो अंतर्मुखी हो, अंतर्मुखी का मतलब कोई धीर होता हो, कोई धीर होता हो और आवृत चक्षु होता हो साधन अवस्था में और अमृतत्व की तीव्र इच्छा करता हो तो अंतर्मुखी होकर के प्रत्येक आत्मानम इच्छत प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार करता है। तो ये तो साधन बता दिया जी, लेकिन जो व्यक्ति अंतर्मुखी नहीं होता है वो जाल में ही फंसेगा, अनंत काल से फंसते आ रहा है, आगे भी फंसता जाएगा। इसलिए आगे का मंत्र इस बात को बतलाता है। देखिए जी, द्वितीय मंत्र में पराच कामान अनुयन्ति बालास ते मृत्युर्यन्ति विदितस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेषु इह न प्रार्थयन्ते। देखो जी, कोई बालक बोल दिया, बालक श्रुति क्या बोल रही है, बाला बाला मतलब बालक है ना, बालक कैसे बोल दिया, हम इतने बड़े बड़े हो गए श्रुति बालक कैसे बोल दिया। व्यक्ति को बालक कहते ना क्रोध हो जाता है ना, गुस्सा आ जाता है। और श्रुति सबको कह रहे भैया, हाँ यहाँ पर कोई अवस्था की बात नहीं है यहाँ पर, हाँ तो बालक क्यों कहा फिर। बालक इसलिए कहा, जैसे मान लो बालक जीवन भर देखो बाल्यावस्था में खेलने कूदने में ही मन लगा देता है, माता पिता इतना समझाते हैं भाई स्कूल जाओ पढ़े मन लगाओ, ये सुनता ही नहीं है। हाँ तो मन का रस जहां से मिल रहा है उसी में लगा रहता है बालक। मान लीजिए कोई बालक घर से तो निकलता है पढ़ने के लिए, खेलने के लिए चला जाता है, आ दो दिन तक नहीं गया विद्यालय में, तीसरे दिन गया, मास्टर ने पूछा भी कि दो दिन तक क्यों नहीं आए, तो बालक ने उत्तर दिया कि मैं बीमार हूं, आप जानते हैं ना मैं बीमार हूं भाई, कौन सी बीमारी है, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना। तो बालक ने कहा कि मुझे पथरी का बीमार, पथरी 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 जानते हैं ना, हाँ स्टोन पेट में होता है। तो मास्टर जी को संशय हुआ, भाई इतना छोटा सा बालक इसको पथरी कैसे हुआ, बता पथरी कहां पर हुआ, कुछ तो बताना चाहिए ना। पथरी होता है इतना मालूम है बालक को, लेकिन कहां पर होता है ये मालूम नहीं है, तो कुछ तो बोलना चाहिए, मेरे पैर में हुआ है, पैर में है ना, ऐसा हो जाता है। तो बालक का मन जैसे खेलने कूदने में ही लगता है, पढ़ाई की हित की बात बोलने पर भी नहीं सुनता है, देखो है ना, इसी वगैरह हम भी तो ऐसा है और क्या है। तो मन का रस जहां से मिल रहा है बस उसी में ही लगे रहते हैं जीवन भर। तो बालक और अज्ञानी में क्या अंतर, कोई अंतर नहीं है। इसलिए साधन के महत्व को, श्रवण आदि मन श्रवण मन निध्यासन के महत्व को, जिसने हमारा प्राण को चला रहा है शरीर को चला रहा है उसका मैं ध्यान करूं प्रातः काल में कम से कम, इसी में हमारा हित है, है ना। माता पिता जैसे उसको बहुत समझाते हैं फिर भी सुनता ही नहीं है, तो माता पिता जैसे सोचते हैं परमात्मा भी ऐसे ही सोचते हैं और क्या। देखो इसको हमने कितना उपदेश किया, देखो उपनिषद, यहाँ उपनिषद में उपदेश किया भाई, गीता में किया, भागवत में किया, देवी भागवत में किया, इसको कितने उपदेश देते हैं फिर भी सुनता ही नहीं। देखो मार भी खाता है जैसे माता पिता मारते हैं कि नहीं, ये भी मार खाता है अज्ञानी है। तो जीवन भर आपने जिससे मोह किया, जिस पुत्र से मोह किया, प्रीति किया, वही पुत्र बड़ा होकर के डांट देगा माता पिता, चुप रहो आपको कुछ नहीं आता है, तो पूजा पाठ में लगे रहते हो, विज्ञान कहां तक चला गया देखो, आप उसी में लगे रहते हो है ना। तो जीवन भर आपने जिसके प्रति मोह किया वही आपको डांट देगा देखो, आप नाराज हो जाएंगे, ये मार तहर क्या है। रोज संसार से अपमानित होते हैं, है ना, निंदित होते हैं फिर भी हम समझते नहीं, देखो साधन के महत्व को नहीं समझते हैं। इसलिए बालक और अज्ञानी में कोई अंतर नहीं, देखो हो गया ना। इसलिए श्रुति बोलती है ये जो जितने भी अज्ञानी है बहिर्मुखी ये सब कैसे हैं, बालक है बालक। इसलिए बालक क्या करता है, जैसे मन जहां से रस खींच रहा है उसी में लगा रहता है, उसी प्रकार अज्ञानी रूपी जो बालक है पराचह कामान, बाह्य जो काम्यमान वस्तु है उसके पीछे पीछे बस लगा रहता है। और जहां पर आत्मा से बाहर जो अनात्मा जितने भी है उसमें पराधीनता है, ये बाह्य पदार्थ पराधीन करता है, पराधीन करेगा है ना भाई, किसके प्रति इच्छा हो गई वो वस्तु की उठा कर ले जाएगा, कोई चुरा कर ले जाएगा, नहीं तो गिर जाएगा टूट जाएगा। देखो कोई बढ़िया शीशे का पदार्थ अपना सजा कर रखा है आप कोई गिरा देगा, आप दुखी हो गए कि नहीं है ना। इसलिए बाह्य पदार्थ में पराधीनता है लेकिन वो अंदर के पदार्थ में पराधीनता नहीं, देखो हाँ। परमात्मा का आप ध्यान करते हैं अपने स्वरूप में, इसको कौन छीनेगा बताओ, कोई छीन नहीं सकता इसको। इसलिए श्रुति बोलते हैं पराचक कामान जो बाह्य पदार्थ है उसके पीछे पीछे हाँ ये बालक भोग में लगा रहता है, भोग में लगा रहता है। और ये भोग ऐसा नहीं, ये भोग में फंसाने के लिए है ना, ये माया जो है जाल बिछा रखा है, जाल बिछा रखा हो गया ना। ये तो कैसे जाल बिछा रखा है, तो समय हो गया कल विचार करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।